نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير عشر مبشرة اس میں سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کس طرح سے ان لوگوں کو زمین پہ رہتے ہوئے جنت کی خوشخبریاں ملیں لیکن اس سے ان کے نہ تو عمل میں کوئی کمی آئی نہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب ہم کچھ بھی نہ کریں نیکیوں کی طرف بھاگنا اور اچھے اچھے کام کرنا جب گھٹی میں پڑ جاتا ہے تو بندہ صرف جنت کے لیے یا ثواب کے لیے کام نہیں کرتا یہ اس کی عادت بن جاتی ہے یاد رکھیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں نا اس میں ہماری دو نیتیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے نمبر ایک اللہ کی رضا اور نمبر دو جنت کی طلب رغبن و رہبن خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری بدنیتی یا کام غلط طریقے سے کرنا اس کو ضائع نہ کر دے لیکن اس کے باوجود جب انسان کسی کام کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ صرف ان دو چیزوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس لیے بھی کہ مجھے کرنا ہی یہ ہے نو دفعہ حضرت عثمان کو غزوہ تبوک کے موقع پہ عثمان فی الجنہ کے الفاظ ملے اللہ کے نبی نے ان کو کئی مواقع پہ کہا کہ عثمان جنت میں ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی نیکیاں کیوں نہ کم ہوئیں کیونکہ یہ صرف ثواب اور حصول رضا کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دل دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھی بھی تھی ابھی تک جتنا کچھ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی تھی اور دل بھی دیا تھا اگر اللہ مال دے تو دل بھی عثمان جیسا دے اور ان کی زندگی کا وہ ایک واقعہ کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا شخص ان کے گھر کے دروازے پہ آیا کہ کچھ مانگے لیکن گھر میں آواز کیا تھی کہ جب ایک چراغ سے کام چل سکتا ہے تو پھر دو کیوں چلائے اور یہ بات سن کر اس شخص کی جرت نہ ہوئی عثمان غنی کے سے کچھ مانگنے کی پلٹ گیا لیکن بعد میں دوبارہ جب بھیجا گیا اور انہوں نے دوبارہ سوال کر ہی دیا تو اشرفیوں کی تھیلی دی یہ فرق تھا پوچھا کیوں فرق کیا کہنے لگے کہ چراغ کا بل میرے نام پہ آتا وہ میرا ذاتی خرچ تھا اور یہ جو تم نے مانگا یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں اصل میں یہ وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ نے چنا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے منتخب کر لیے امتحان لے لیے ان کے تو عثمان غنی کی اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ تھے ہم نے ان کی شخصیت کو دیکھ لیا اب تھوڑا سا ہم ان کی زندگی کا دیکھیں کہ تاجر تو تھے ہی بالکل شروع زندگی سے اپنے آپ کو اس چیز میں رکھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے یا بڑے تھے کتنے چھوٹے تھے صرف 6 سال چھوٹے تھے اور کیا بنے نبی کے داماد کیا اتنی بڑی عمر کا شخص داماد بن سکتا ہے یہ چیز سیکھیے اور ایک دفعہ نہیں دوسری بار آج ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے اس مزاج کو سمجھ نہیں پاتی تو یاد رکھیے شخصیات بڑی اہم ہوتی ہیں وہ شخصیات اچھی ہیں آج تھوڑی سی بات کروں گی حضرت عثمان کے دور خلافت کی ٹوٹل 11 برس 11 ایئرز کیونکہ یہ چیزیں تاریخ کے پردے میں اکثر چھپی ہوئی ہیں حضرت عمر کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے آپ کے زمانے میں بہت سی فتوحات ہوئیں ایشیا کوچک خراسان طرابلس طبرستان کرمان اور اسی طرح سجستان جیسے کچھ علاقے ان کے دور خلافت میں امت مسلمہ کو ملے آپ کے زمانے خلافت کے جو آخری سال تھے یہ سازشوں میں گزر گئے یاد رکھیے کل ذی نعمت مقصود ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے کچھ لوگ آپ کے مخالف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس فیئر طریقے سے آپ حکومت چلا رہے ہیں تو وہ بھی کریں پلس یہود کی طرف سے ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا اس نے کچھ لوگوں کو آپ کے خلاف کیا آپ پہ جھوٹے الزام گڑے اصل میں یہ شخص یہودی تھا لیکن نام سے مسلمان بنا کچھ نام کہہ لیجئے بلوائی آپ اس کو سبائی بھی کہہ سکتے ہیں ایک قبیلہ تھا وہاں کے لوگوں کو جمع کیا مدینہ کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان کو 35 ہجریہ میں شہید کر دیا گیا جس وقت آپ شہید ہوئے آپ کی عمر مبارک 82 برس تھی 82 साल की उम्र पाई। देखा जाए तो लंबी उम्र पाई ना। इससे पहले के खुलफा कितनी उम्र में चले गए? 60s में चले गए। 2 दिन तक आपकी लाश बगैर कफन के पड़ी रही। आपके प्यारे करीब ना आ सके, क्यों कि बागी कहीं हमें ना पकड़े। किसी को इजाज़त नहीं थी कि आपका कफन दफन करें। मदीना में उस वक़्त एक क़यामत बरपा थी, और अमली तौर पे कह लीजिए कि बगावत हो चुकी थी और बागियों ने मदीना का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। कुछ लोगों ने रात को हिम्मत की, चुपके से आपकी डेड बॉडी को लेकर आए, और फिर उसके बाद जन्नतुल बकी में आपको दफन किया, और इनके जनाजे में टोटल 17 लोग शामिल हुए थे। इतना बड़ा खलीफा, और आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह ने उनको, यानी इतने थोड़े लोगों को उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ने का मौका दिया, तो ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। आपकी शहादत के क्या असरात हुए थे? इंतहाई गमनाक वाक़या। आज बहुत सारे लोग तकरीबन 39 ईयर्स के बाद के वाक़े, वाक़े करबला के शहदा को एक बहुत ज़्यादा बड़ी शहादत करार देते हैं। शायद उसकी वजह यह कि हज़रत उस्मान की शहादत को वो ज़्यादा जानते नहीं हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो 40 दिन के भूखे थे, यानी उनको उनके घर में बंद किया गया था, और इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि ये फ़ौज के साथ हमला कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात के दिफा के लिए फ़ौज को बीच में नहीं लाऊंगा। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो कर दो, कसास लिया जाएगा। क़यामत तक एक साथ नमाज ना पढ़ सकोगे ना जिहाद करोगे, यानी शिराजा बंदी टूट जाएगी। और हज़रत उस्मान की शहादत उम्मत मुस्लिमा में फितनों का दरवाज़ा खोल गई। वो दिन और आज का दिन उम्मत मुस्लिमा दोबारा नहीं सुलझी। खाना जंगियां हुई, फतूहात का सिलसिला रुक गया, इस्लामी कुव्वत जो थी कमज़ोर हो गई। और मैं ये पढ़ते हुए सोच रही थी कि कितने नरम थे ना, कितने बाहया, कितने खूबसूरत थे, कितने दौलतमंद थे। इसके बावजूद भी लोग उन पर इल्ज़ाम लगाने से नहीं चूके। लोग कभी भी, याद रखिए, अच्छे से अच्छे काम करने वालों को भी नहीं माफ़ करेंगे। हज़रत उस्मान पे जो एक इल्ज़ाम था वो क्या था कि अपने रिश्तेदारों को बहुत पूछते हैं। अकरबा परवरी का इल्ज़ाम था, हालांकि बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और हज़रत उस्मान ने मस्जिद नबवी की तौसी की। कहत के ज़माने में लोगों में गल्ला मुफ्त बांटते थे, और आप हज़रत अबू बकर और उमर के दौर में मशीर थे, यानी वज़ीर थे। ये कह लीजिए कि पहले भी आपका सियासत में हिस्सा था या हुकूमत में था, और कातिबे वही भी थे। बुखारी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की एक रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी इस हाल में दुनिया से रुख्सत हुए कि वो इन, यानी हज़रत अली और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो से राज़ी थे। अल्लाह भी राज़ी तो वो भी राज़ी, लेकिन जब बंदे दुश्मन बन जाते हैं तो वो बाज़ दफ़ा इंसान की सारी की कराई नेकियों को ज़ाया कर देते हैं। फिर इसी तरह से हज़रत उस्मान को अगर हम इस रंग में देखें कि अल्लाह ने इनसे बहुत बड़े काम लिए, जैसे मैंने पीछे तذکرہ किया कि इनके कारनामों में किताबत वही भी थी, क़ुरान को पायल अप करना था। ये जो मौजूदा मस्जिद नबवी की तौसी चल रही है आज, ये हज़रत उस्मान के दौर से शुरू हुई थी। उससे पहले जुरत नहीं किसी को हुई कि इवन कच्ची मस्जिद को पक्का भी करें, लेकिन इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर पक्के हों और नबी की मस्जिद कच्ची हो। और आज भी देखिए कि उस जगह जाकर एहसास होता है कि अगर इतनी साफ़ सुथरी और इतनी वुसत और सफाई का ख्याल ना हो, तो हो सकता है कई नरम मिजाज लोग, नाजुक मिजाज वहाँ आना भी ना पसंद करें। और हज़रत उस्मान में हया थी। अल्लाह के नबी एक मौके पर लेटे हुए थे तो आपकी पिंडली से हल्का सा कपड़ा हटा हुआ था। अबू बकर आए, आप लेटे रहे, उमर आए तो आप लेटे रहे। जूँ ही हज़रत उस्मान अंदर आए तो आप उठकर बैठ गए। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों? फरमाया, मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। बाहया थे। मर्दों में हया का तस्करा बहुत कम आता है। कहते हैं कि अगर गुसल करते तो दरवाजे को बंद करके कपड़े उतारने में इस कदर शर्माते थे कि अपनी पुश्त भी सीधी नहीं करते थे। फिर जू नौरैन थे ना, तो जू हिजरतैन भी थे, दो हिजरतें की, हबशा की तरफ भी और मदीना की तरफ भी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि 9 हिजरी में उम्मे कुलसूम फौत होती हैं, पहली बीवी 2 हिजरी में फौत हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो हज के मनासिक सबसे ज़्यादा जानते थे, ये भी इनकी एक खूबी है। हज के तरीके, रिचुअल सबसे ज़्यादा इनको पते थे और लोग इनसे सीखते थे। और तरतीब में इनका नंबर क्या था मुस्लिम होने में? फोर्थ, चौथा नंबर था। तीन इनसे पहले थे, ये फोर्थ है। अल्लाह अकबर। हज़रत इनकी खाला थी, उन्होंने सबसे पहले इनको तबलीग की थी, लेकिन जब बाकायदा इनके दिल में इस्लाम दाखिल हुआ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोटिवेशन से था। और इसी तरह से इनका एक और कारनामा भी क्या है, कसरत इबादत। रात भर भर खड़े रहते और रोज़े रखा करते थे। और आप देखिए कि नबी सल्लम की अजवाज के लिए हुजरे जो बने वो हज़रत उस्मान की ज़मीन पे बने थे। इन्होंने जगह खरीद कर अपने पैसों से वो जगह ली और वहाँ नबी सल्लम की बीवियों के लिए घर बने थे। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 35,000 दिरहम का कुआं खरीद कर आपने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, वक्फ लिल्ला। और ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको आप देखें तो जब तक पूरा दिल ना इस्लाम में घुसा हो इंसान ये नहीं करता। फिर कहते हैं कि इनके चेहरे पे हल्के हल्के चीचक के निशान भी थे, दाढ़ी घनी थी और अपनी दाढ़ी को मेहंदी से रंगा करते थे और चेहरा सफ़ेद था। जो भी है, लेकिन आप देखिए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस खूबी पे चुना गया, ये नोट कीजिएगा। ज़ाहिर है कि हज़रत अबू बकर और उमर तो सारी ज़िंदगी ही नबी सल्लम के साथ दिखते हैं, अब उस्मान गनी को क्यों चुना गया? तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने की कोशिश की गई और अब ज़ख्मी हो गए, 3 दिन की मोहलत थी। अब ज़रा से इस चुनाव को भी समझिए कि आप में खूबी कोई होती है तभी अल्लाह आपको चुनता है। तो हज़रत उमर ने हज़रत मिक़दाद को हुक्म दिया 6 लोगों के नाम देकर, नंबर एक अली, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक्कास और अब्दु बिन रहमान, कि इन 6 में से किसी एक को खलीफा मुंतखब करना है, यानी नॉमिनेटेड ये लोग थे। और फरमाया किसी वहाँ ये उस मजलिस में जब तक वो अपने में से किसी एक को खलीफा ना चुन ले किसी दूसरे को ना जाने देना, यानी इन्हीं में से एक चुने जाएंगे। तो बहरहाल हज़रत इब्ने उमर को राय देने के लिए वहाँ शरीक किया गया और इस तरह सब की मुत्तफिका राय से हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने। बास लोग आज इस तरह की बातें करते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ कि नऊज़ बिल्ला, ये खुद ही आगे आ गए, लेकिन इन लोगों को ज़बरदस्ती खलीफा बनाया जाता था। याद रखिए लीडरशिप आसान काम नहीं है। बड़ा बनना बज़ाहर बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन कंधों पे जो बोझ बड़ों के होता है वो छोटों के नहीं होता। आप अपने और अपने माँ बाप को सोच लें जब आप छोटे थे और वो कई फिक्रों में खोए होते थे। जिस वक्त आप आराम से सो जाते थे थक हार के खा पी के, उस वक़्त वो फिक्रों में होते थे। तो हज़रत उस्मान ने खुद खिलाफत नहीं मांगी। इन लोगों की नज़र इसमें नहीं थी कि चलो हम कुछ अपना माल सीधा करें, कुछ शोहरत लें। ये दीन के खिदमतगार बन के, असईदू, जो सईद होता है कौम का वो कौन होता है, खादिम, खादिम होता है। तो ये खिदमत के जज्बों से ये सारे काम करते थे। और बहुत सारे लोगों ने राय दी थी कि हम अपने में से सबसे ज़्यादा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को इस चीज़ पे पेश करता हूँ। यहाँ मैं सोच रही थी कि सारी ज़िंदगी नबी के सामने इन्होंने अपना माल बार बार लुटाया, लेकिन बाद में खिलाफत मिल गई। देखिए बज़ाहर खलीफा के हाथ में इख्तियार तो होता ही है ना, ये तो अलग बात है ना कि वो अपने इख्तियार को मिसयूज़ नहीं करते थे, यूज़ भी कर सकते थे। तो अल्लाह ने जो इनसे लिया कि इनको वापस नहीं दिया, सब कुछ वापस दे दिया। और इसी तरह से हज़रत उस्मान का जब नाम लिया गया तो बैत ली गई थी, और उस बैत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो भी पेश पेश थे। यानी बाज़ लोग कहते हैं अली ने बनना था और ये पहले बन गए, ये सब बेकार बातें हैं। ऐसी चीज़ों को ना पढ़ना चाहिए ना सुनना चाहिए। जूँ ही इनको खलीफा बनाया गया ये मिंबर पे आए और लोगों को फिर अच्छे काम करने की रग़बत दी, गफलत से डराया, हर मामले में अल्लाह की रज़ा को सामने रखो। और जो भी कह लीजिए आज के दौर में वज़ीर यानी आमिल और हाकिम थे, उनके नाम एक ख़त लिखा और उनको बताया कि हज़रत उमर फ़ौत हो चुके हैं और मुझे अब खलीफा बनाया गया है। जिस तरह हज़रत उमर के दौर में तुम खिलाफत का काम या जो भी तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी दयानत और अमानत के साथ करते थे, अभी भी इसी तरह करते रहो। यानी इन्होंने अपनी कैबिनेट को कह लीजिए कि एक अच्छा मैसेज दिया था। और आपको पता है कि हज़रत उस्मान के दौर में सबसे पहला मुकदमा कौन सा आया था? किसी ने पढ़ा कभी उसके बारे में कुछ? सिर्फ चंद दिन गुजरे थे और अबू लूलू एक खंजर लिए हुए वहाँ आया। अबू लूलू कौन था? मजूसी, जिसने कत्ल किया था। यानी सबसे पहला मुकदमा उसी शख्स की तरफ से आया था। हिस्ट्री को पढ़ें, यकीन करें आज हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त है नहीं। मैंने एक जुमला कहीं पढ़ा था, डू यू हैव टाइम टू किल। अब इसका ये नहीं होता कि किसी को कत्ल करने का टाइम है कि नहीं, टाइम को किल करने का वक्त है। सच बताइए, इतना कुछ है किताबों में, इतना कुछ है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वक्त दे, फोकस्ड हो जाए, ज़िंदगी से हर वो चीज़ हटाकर अपनी स्पीड बढ़ाएं। जैसे आपने कभी वो रेस गेम खेली है जिसमें रुकावटों को हटाते हैं, क्या बोलते हैं, हर्डल रेस, चीज़ें हटाते जाएं और भागते जाएं। आप दिन ब दिन दीन, दुनिया, कुरान, इस्लाम, आपको कितना कुछ और स्वर मिल रहा है ना, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। इफ़ यू वॉन्ट टू रन, अगर आपको तेज़ चलना है, आपको भागना है, तो अपने आप को हल्के रखें। ज़्यादा वक्त जहन का, दिल का, दिमाग का आपका इन चीज़ों में जाए, और बाकी चीज़ें साइड इश्यूज़ हैं। कुछ भी नहीं ख़त्म होता, सिर्फ सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगियां हमारे लिए मिशले राह बन जाएं। किस तरह की ये ज़िंदगियां गुजार के, देखिए ना, 1400 साल पहले की शख्सियत, और आज पढ़ रहे हैं और दिल चाह रहा है कि और पढ़ते जाएं। बहुत सारे वाक़यात थे इनकी ज़िंदगी के, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह अपने मुताले के लिए बुक्स जो नोट करें उसमें लिखें। मैं आपको एक दो किताबों के नाम भी एंड पे बताऊंगी इस कोर्स के जो आप इंशाल्लाह छुट्टियों में भी पढ़ेंगे और उसके बाद भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों के वाक़यात पढ़ के हमें आज के हालात के लिए गाइडलाइन मिलती है। अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हो, अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए, और हमें अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश करने वाला बना दे कि कल उनसे भी इसी तरह के सितारे निकलें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। एक छोटी सी बात जो रह गई, सीरत तफसीर में तो बताई थी कि हज़रत उस्माने गनी रज़ी अल्लाहु अन्हो के घर का जब हिसार किया गया, और वो अपनी बीवी नाइला, उसका नाम था, उसके साथ वहाँ बंद कर दिए गए, और 40 दिन के मुहासरे के बाद जब रोज़ उठते थे, एक दिन पूछते हैं कि कुछ खाने को है, तो बीवी ने कहा मैं पूछती हूँ, देखती हूँ। वापस आई, कहा कोई बात नहीं, मैं रोज़े से हूँ। उसी नकाहत में कुरान पढ़ रहे थे और आँख लग गई। जब आँख खुली तो मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मुझे ख्वाब में नज़र आए थे कि उस्मान, आज का रोज़ा तुम हमारे साथ खोलोगे, इफ्तार करोगे। ये बात अभी हो रही थी कि घर का दरवाज़ा टूटा और बिलवाइयों ने हमला किया और इन पे खंजर मारा, और वही कुरान जो आज भी टर्की में रखा हुआ है, बस यकफी का हुमुल्ला, पहले पारे का बिल्कुल आखिरी रुकू है कि बस अन करीब किफ़ायत करेगा तुझको इनसे अल्लाह। उसके ऊपर हज़रत उस्मान के खून के छींटे पड़े और वहीं पर उनकी शहादत हो गई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अल्लाह बाज़ दफ़ा दुनिया में तकलीफ़ों में डाल देता है, लेकिन उसके बाद उखरवी राहत जो है वो मिल जाती है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए इन सारी बातों को पढ़ना आसान करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।